14 प्रकृति के तीन गुण, श्लोक संख्या 12 बोलिए। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मण अशम स्त्रिय रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामशमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामशमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामशमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। शब्दार्थ बोलिए। लोभा लोभ प्रवृत्ति ही कार्य आरंभ उद्यम कर्मणाम कर्मों में अशमः अनियंत्रित स्प्रिहा इच्छा रजसी रजोगुण में एतानि ये सब जायन्ति प्रकट होते हैं विवृद्धे अधिकता होने पर भरत ऋषभ हे भरत वंशियों में प्रमुख हे भरत वंशियों में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति सकाम कर्म गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कि रजोगुण जब बढ़ता है शरीर में तो ये सब चीजें आती हैं। लक्षण भगवान बता रहे हैं कि जब शरीर में रजोगुण बढ़ता है तो क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान ने क्या बताया है, लोभ ये उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है और प्रवृत्ति यानी कार्य आरंभ होता है और फिर आरंभ यानी प्रयास विशेष रूप से प्रयास होता है, कर्मणाम अस्मह और अत्यधिक आसक्ति होती है और स्पृहा गहन उद्यम होता है। तो ये सब चीजें रजोगुण के बढ़ने पर पैदा होती हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। हाँ, रजोगुण में ये होता है। रजोगुण की पहचान क्या है कि जो कुछ भी पहले से मिला हुआ है उसमें आप संतुष्ट नहीं होंगे, है ना। सत्वगुण में क्या होता है, व्यक्ति संतुष्ट रहता है, जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहता है, सुखी होता है। और रजोगुण में संतुष्ट नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर निर्धन है और सत्वगुण में है तो सुखी है, संतुष्ट है, रूखा सूखा मिलता है उसको तो वो खा लेता है और एक झोपड़ी में रहता है तो वो जो है उसमें सुखी है, सत्वगुण में है, और रजोगुण में कोई व्यक्ति है तो करोड़पति है तो भी वो सुखी नहीं है। क्यों? उसके अंदर लोभ है। लोभ का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी लोभ की परिभाषा बताते हैं। लोभ क्या होता है? जो कुछ भी पहले से आपको प्राप्त है उसमें आप संतुष्ट नहीं होते हैं, इसको कहते हैं लोभ। तो ये है, संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। ये क्या है? प्रवृत्ति। एक तो लोभ हुआ, लोभ का मतलब आप संतुष्ट नहीं है। फिर प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब यही है कि अगर आप मकान बनवाते हैं है ना, तो फिर और अच्छा मकान, फिर और अच्छा मकान, बड़ा महल, जैसे धीरे धीरे अपनी इच्छाएं बढ़ाता है, उसको कहते हैं प्रवृत्ति और आरंभ, है ना। आरंभ गहन उद्यम है ना। फिर वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है, इसको भगवान ने क्या है, कर्मणाम अस्मा, बहुत अधिक लालसा है ना। इसके बाद प्रोपर्टी है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है, इसको कहते हैं स्पृहा। कोई सीमा ही नहीं इंद्रिय तृप्ति की, जितनी भी करे उतना कम है। फिर वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हो गया। अब हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत में नारद जी जो उपदेश देते हैं राजा प्राचीन बरहि को, तो उसमें इस शरीर को बताते हैं कि ये नौ द्वारों का नगर है, नव द्वारपुर, नौ द्वारों का नगर है। और जो जीवात्मा है रजोगुण में है तो क्या करना चाहता है? शरीर को भोगना चाहता है, तो उसको कहा गया है राजा पुरंजन, इस शरीर रूपी नगर में जो जीवात्मा है वो राज्य कर रहा है, राजा है ना। तो उन्होंने बड़ी सुंदर कथा सुनाई राजा पुरंजन की, तो उसका फिर उन्होंने जितने भी रूपक बतलाए उनका अर्थ बतलाया कि इस शरीर रूपी नगर में जो है जो नौ द्वार हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, और जो राजा पुरंजन यानी जो जीवात्मा है ना, तो अलग अलग प्रकार के द्वारों से क्या क्या चीजें भोगता है ना। तो बड़ा सुंदर इसमें वर्णन है, ये मैं आपको सुना रहा हूँ। नारद जी बताते हैं राजा प्राचीन बरहि को कि तुम जानो कि पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न शरीरों में जाता रहता है, ये जीव आत्मा है ना। तो ये पुरंजन जो एक दो एक पैर वाला भी शरीर होता है कभी, या दो पैर वाला शरीर होता है, या कभी चार पैर वाला शरीर होता है, राजा पुरंजन जो जीव है वो अलग अलग शरीरों में जाता है, तो कभी एक पैर वाले शरीर में जाता है। एक पैर वाला शरीर क्या है? एक पाद। एक पैर वाला शरीर कौन सा है जानते हुए? एक पैर वाला शरीर वृक्ष, जो वृक्ष हैं ये एक पैर वाले हैं, है ना। तो एक पैर वाला शरीर, कभी दो पैर वाला शरीर, वो तो आपका ही है मनुष्य, वो कभी तीन पैर वाले शरीर हैं, कोई चार पैर वाले शरीर हैं, और हैं और अनेक पांव वाले भी शरीर हैं, है ना, और पांव विहीन भी है, बिना पैर के भी शरीर हैं, बहुत शरीर हैं। इन विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करने वाला जीव भोक्ता के रूप में पुरंजन कहा जाता है, रजोगुण, रजोगुण में भोगना कहता है। पुरुषम पुरंजनम विद्यां यं विनक्त्यात्मनः पुरम एकं द्वित्रि चतुष्पादम बहुपादम अपादेकम। फिर इस राजा पुरंजन का एक मित्र है, उसका नाम बताया अभिज्ञात, अभिज्ञात नाम का मित्र है ना। तो वो कौन है? जिस पुरुष को मैंने अभिज्ञात कहा है वह जीव का स्वामी और मित्र परमेश्वर है। परमात्मा जीव के साथ ही रहते हैं लेकिन वो छिपे रहते हैं, इसलिए अभिज्ञात कहे जाते हैं। वो परमात्मा जो है ना जीव के साथ ही है। चूंकि जीव भगवान को इन संसार के नाम गुणों में और कर्मों के द्वारा नहीं जान सकते, इसलिए जीव के लिए सदा वो अज्ञात रहते हैं। इसलिए परमात्मा को अविज्ञात नाम का सखा बताया गया है। यो विज्ञात पुरुषस्य सखेश्वरम् यन्न विज्ञायते पुंभिर् नामभिर्वा क्रिया गुणे। तात्पर्य लिखा है क्योंकि श्री भगवान बद्ध जीव के लिए अज्ञात रहते हैं, इसलिए उनको निराकार अविज्ञात इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये तथ्य है कि जहां तक रूप नाम गुण लीलाओं का संबंध है, श्री भगवान को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। फिर नारद जी कहते हैं कि जब जीव प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है तो वो अनेक शरीरों में से उस शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार हैं। कौन सा शरीर? जिसमें 9 द्वार हैं और 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं। इस प्रकार वह मनुष्य बनना श्रेयस्कर मानता है। यदा जिगृच्छन् पुरुषान् कार्तेन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रिं तत्रामनुतः साध्वती। तात्पर्य लिखा है 2 हाथ 2 पांव स्वीकार करके जीव प्रकृति के गुणों का भरपूर भोग करता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण 7:27 कहते हैं, हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोहवश उत्पन्न है और इच्छा और घृणा के द्वंद द्वारा परास्त होते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थे द्वंद मोहे न भारत सर्वभूतानी सम्मोहम सर्गेयान्ति परंतप। जीव इस भौतिक जगत में क्यों आना चाहता है इसे समझना कठिन है। अच्छे परिवार में जहां पर मांसाहार नहीं है, मद्यपान नहीं है, द्यूत नहीं है, यौनाचार पर प्रतिबंध है, ऐसे परिवार में जन्म लेकर भी लोग इन वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं। कोई न कोई ऐसा मिल ही जाता है जो अवैध यौनाचार के लिए वेश्या के यहाँ जाता है या होटल में जाकर मांस खाता और मद्यपान करता है। कोई न कोई ऐसा मिल जाएगा जो रात्रि क्लबों में जाकर जुआ खेलना पसंद करता है ना। तो ऐसी संगति जो है ना वो आकर के अपना जो है सर्वनाश करता है। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि प्रमदा जो है ये भौतिक बुद्धि है। जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है तो वह अपने को शरीर समझ बैठता है। मैं और मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से दुख और सुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। बुद्धिम तु प्रमदाम विद्यां ममाहम इति यत्कृतम् यामाधिष्ठाय देहेस्मिन् पुमान् भुक्ते क्षभिर्गुणान्। आगे नारद जी कहते हैं जो 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेन्द्रियां हैं ये इस बुद्धि की मित्र हैं। बुद्धि की मित्र कौन है? 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेन्द्रियां। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने और कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। इंद्रियों के व्यापार उसकी सखियां हैं। किसकी? बुद्धि की सखियां हैं। और वह सर्प जिसे 5 फणों वाला बताया गया है, 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील 5 प्राण हैं। जो सर्प जो रक्षा करता है इस बुद्धि की। सखाय इंद्रिय गणान ज्ञानम कर्म जयत कृतम सख्य संवृत्ते हाँ प्राणाम पंचवृत्तिर यथो रगः। फिर ग्यारहवां सेवक मन है जो बुद्धि के, ग्यारहवां सेवक मन है, वह कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों इन दोनों का नायक है। पंचाल राज्य वह आकाश है जिसमें पांच इंद्रिय विषयों का भोग किया जाता है। तो राजा पुरंजन जो है पंचाल देश में जाते हैं भोग करने के लिए, तो पंचाल का मतलब क्या है? आकाश। इस पंचाल राज्य के भीतर शरीर रूपी नगरी है जिसमें नौ द्वार है। बृहद बलम मनो विद्यां उभयेन्द्रिय नायकम् पंचाला पंच विषया यन मध्य नव नव खम्पुरम। शास्त्र में प्रभुपाद लिखते हैं मन समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु है जिसे बृहद बल कहा गया है। माया के चंगुल से निकलने के लिए मनुष्य को मन पर नियंत्रण रखना होगा। अब जो नौ द्वार हैं ये कौन कौन से हैं? एक ही दिशा में जो है ना कुछ द्वार हैं, जैसे दो आंख हैं दो नथुने हैं, ये एक ही दिशा में है। ये शरीर रूपी नगर के ये द्वार हैं, दो आंख हैं दो नथुने हैं, है ना, और दो कान, ये भी द्वार हैं। कितने द्वार हो गए? दो आंख हैं दो नथुने दो कान, कितने द्वार हो गए? छह द्वार तो ये हो गए। नौ द्वारों में से छह द्वार तो ये हो गए। और मुंह है एक और द्वार हो गया, कितना हो गया? सात। और शिश्न और गुदा ये दो द्वार नीचे के, कितने हो गए? नौ द्वार हो गए। इन नौ द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर जीव भौतिक जगत में कार्य करता है और रूप स्वाद जैसी इंद्रिय विषयों का भोग करता है। अक्षण इनाश के कर्णों मुखम शिश्न गुदावीति द्वे द्वे द्वारो बहिर्याति यस्तदिन्द्रिय संयुतः। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति पुनः जानते हुए जीव मन के द्वारा निर्देशित होकर इन नौ द्वारों से भौतिक वस्तुओं का भोग करने बाहर जाता है। राजा पुरंजन इस नौ द्वारों वाली नगरी से बाहर जाते हैं विषयों का भोग करने के लिए। आप समझे ना, इन भौतिक वस्तुओं के साथ अपने दीर्घ संपर्क के कारण वह अपने वास्तविक आध्यात्मिक कार्यों को भूल जाता है। इस तरह से दिग्भ्रमित हो जाता है, इस संसार वैज्ञानिकों और विचारकों के नेतृत्व में दिग्भ्रमित हो रहा है जिन्हें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार बद्ध जीव अधिक अधिक फंसता जाता है। अब पांच जो द्वार हैं इस नगर के ये सामने हैं। कौन से हैं पांच द्वार? दो आंखें दो नथुने एक मुंह, पांच द्वार सामने हैं। दाहिना कान जो है दक्षिणी द्वार है, पांच द्वार पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में पांच द्वार हैं और दक्षिण दिशा में एक द्वार दाहिना कान, और उत्तर दिशा में एक द्वार है बायां कान, और पश्चिम की ओर दो द्वार हैं गुदा और शिश्न के, ठीक है ना। चार दिशाओं में जो है ये नौ द्वार कैसे हैं? पूर्व दिशा में पांच द्वार हैं, दक्षिण दिशा में एक द्वार, उत्तर दिशा में एक द्वार और पश्चिम दिशा में दो द्वार हैं। अक्षिणीनाश के आश्यम इति पंच पुराकृतां दक्षिणा दक्षिणा कर्णं उत्तरा चोत्तरा स्मृतां पश्चिमेति दो द्वारों गुदं शिश्नं यहोच्यते। अब जो दो नेत्र हैं ये पास पास में दो द्वार हैं, इनको कहा गया है खद्योत द्वार और अग्रमुखी द्वार, जिसमें राजा पुरंजन जो है भोगने के लिए इस नगर से बाहर निकलते हैं इन दो द्वारों से। एक द्वार है खद्योत, दूसरा अग्रमुखी, ये दो द्वार हैं। और विभ्राजित नामक नगरी को जाते हैं, यानी वो है रूप का विषय, रूप के विषय का आनंद लेता है। राजा पुरंजन इन दो द्वारों से निकल करके और विभ्राजित नामक नगरी में जाता है भोगने के लिए। क्या भोगने के लिए? रूप। आप समझे, इन दो द्वारों से वो रूप का आनंद लेने के लिए निकलते हैं। कौन? महाराज पुरंजन। कौन है? जीवात्मा, आप ही हैं, है ना, ये निकलते हैं। इस प्रकार दोनों नेत्र विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। खद्योताग्रमुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचस्ते चक्षुषे स्वरहां। तात्पर्य पर ऊपर लिखते हैं, दोनों नेत्र प्रकाश जैसे चमकीले पदार्थों से आकृष्ट होते हैं। कभी कभी छोटे छोटे कीड़े अग्नि के प्रकाश से आकर्षित होकर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव के दोनों नेत्र चमकीले और सुंदर रूपों के प्रति आकृष्ट होते हैं, उनमें इसी प्रकार बन जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में आकर्षित होकर कीड़े पतंगे, है ना, ये इसके द्वारा, इस द्वार के द्वारा जो है वो निकलते हैं बाहर और फिर वापस आते नहीं इस नगर में, आप समझे ना, खो जाते हैं। तो ये जो है ना रूप का जो आकर्षण है ये है, जो कि जीव जो है फंस जाता है, ये सब रजोगुण के कारण है ना। अच्छा, फिर दो द्वार ये नथने, इनका नाम है नलिनी और नालिनी। ये दो नथने के जो द्वार हैं, ये नलिनी और नालिनी नाम के हैं नासा छिद्र। और कौन से नगर में जाता है वो? इन द्वारों से निकल करके राजा पुरंजन कौन से नगर में जाता है? सौरभ नाम के नगर में जाता है, उसको कहते हैं सुगंध, सुगंध का भोग करने के लिए। और अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिय है, अपना मित्र साथ में ले जाता है, और वो कौन सा मित्र है? घ्राणेन्द्रिय, सूंघने की इंद्रिय अपने साथ में ले जाता है, उसकी सहायता से आनंद लेता है। किस चीज का? सुगंध का, है ना। तो उस इंद्रिय को साथ में लेके जाता है, उसको कहते हैं अवधूत नाम का मित्र। क्या है? इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, है ना। अच्छा, फिर एक द्वार है ये मुख, इसका नाम है मुखिया, मुखिया द्वार से राजा पुरंजन मुखिया द्वार से बाहर निकलते हैं, तो जाते हैं वो जाते हैं अपने विपण नाम के मित्र के साथ। विपण, विपण का मतलब वाक शक्ति, बोलने की शक्ति से, तो इससे वो बोलने का आनंद लेते हैं और फिर स्वाद का आनंद लेते हैं। तो रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय है, रसज्ञ नाम के मित्र के साथ जाते हैं और कई प्रकार के स्वाद का आनंद लेते हैं, है ना। तो इस द्वार से जो है ना दो अलग अलग नगर हैं जिसमें कि वो आनंद लेते हैं। नलिनी नालिनी नासे गंधा सौरभ उच्यते घ्राणो वधूतो मुख्यास्यम विपणो वांग रस बिंद्र सहा। अब आपण नाम की नगरी जीव के कार्य के सूचक है, ठीक है ना। आपण नाम की नगरी में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेता है कि नहीं। मुख्य द्वार से निकल करके राजा पुरंजन आपण नाम की नगरी में जाते हैं, हैं, और तरह तरह के स्वाद का आनंद लेते हैं। फिर दाहिना कान, ये जो द्वार है ये पितृहु नाम का द्वार है, और बायां कान है देवहू नाम का द्वार। आपणो व्यवहारोत्र चित्रमंदो बहुदनम पितृहु दक्षिणा कर्ण उत्तरो देहु स्मृतः। तो ये दाहिना कान जो है इसका नाम क्या बताया गया, कौन सा द्वार है? पितृहु, पितृहु दाहिना कान है। तो इस द्वार से निकलते हैं दक्षिण पंचाल नाम की नगरी में जाते हैं राजा पुरंजन। अब दक्षिण पंचाल नाम की नगरी में क्या करते हैं? सकाम कर्म के भोग की विधि श्रवण करते हैं, शास्त्रों का श्रवण करते हैं। कैसे? सकाम कर्मों को भोग, कि कैसे विभिन्न प्रकार के कर्मों को भोग करने के लिए क्या क्या अनुष्ठान किए जाए, ये है प्रवृत्ति मार्ग। और उत्तर पंचाल नाम का राज्य है जो कौन सा द्वार है? देवहू द्वार है, बायां कान। तो उससे उत्तर पंचाल नाम के राज्य में जाते हैं तो वो निवृत्ति मार्ग की जो बातें हैं वो सुनते हैं। कौन? राजा पुरंजन, है ना। तो जीव को ज्ञान की प्राप्ति दो कारणों द्वारा होती है। तो कुछ लोग जो है स्वर्ग पाने के लिए श्रवण करते हैं शास्त्रों का, तो वो समझो कि दाहिना कान है, और जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्रों को सुनते हैं वो बायां कान है। आगे अब निचला जो द्वार है, पश्चिम दिशा में जो द्वार है, आसुरी द्वार। आसुरी द्वार क्या है? शिश्न है, मूत्रेंद्रिय है, आसुरी द्वार है ना। तो ये आसुरी द्वार इसको कहते हैं, स्त्री प्रसंग के लिए है, मूर्खों के लिए बहुत मोहक है, जननेंद्रिय दुर्मत कहलाती है। तो दुर्मत नामक मित्र के साथ में ये राजा पुरंजन आसुरी नामक द्वार से निकलते हैं और स्त्री प्रसंग करते हैं। फिर गुदा द्वार, ये निर्दि द्वार कहलाता है। आसुरी में ड्रिवन वांग द्वार यवायो ग्रामीणाम उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तुम निर्वृतिर गुदे उच्यते। तात्पर्य में प्रोफा लिखते हैं, जब संसार का पतन होता है तो सभ्यता आसुरी हो जाती है और सामान्य लोग गुदा और शिष्य को समस्त कार्य का केंद्र बिंदु मानते हैं। यहाँ तक कि वृंदावन जैसे पवित्र स्थान के लोग भी गुदा और शिष्य व्यापार को आध्यात्मिक कर्म मानते हैं। ऐसे लोग सहजिया कहलाते हैं। उनकी विचारधारा के अनुसार संभोग क्रिया में रत रहकर लोग आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों से ये प्रकट है कि संभोग तुष्टि तो निम्न लोगों अरवाद के लिए है, ऐसे मूर्खों को रास्ते पर लाना कठिन है। इन श्लोकों में निम्न लोगों की काम वासना की निंदा की गई है। दुर्मत शब्द का अर्थ है कुनिर्देशित और निर्दि का अर्थ है पाप कर्म। यद्यपि इससे स्पष्ट है कि काम आसक्ति निंदनीय है और दुर्लक्षित है, फिर भी सहजी अपने को आध्यात्मिक कर्मों में रत भक्त मानते हैं। फलतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वृंदावन नहीं जाता। कभी कभी हमसे लोग पूछते हैं, आखिर हमने वृंदावन को क्यों अपना केंद्र बनाया? ऊपर से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन सहजिया लोगों के कार्यकलापों से वृंदावन बहुत बदनाम हो चुका है। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन ही ऐसा स्थान है जहां ये समस्त पापी पुरुष कुत्तों सुअरों और बंदरों का जन्म लेकर तर जाते हैं। अगले जन्म में ये सब आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो पुरंजन जो है अब गोदा द्वार से जब निकलते हैं तो वैशस्थ नामक नगर में जाते हैं, उसको कहते हैं नरक। उधर से उसके साथ लुब्धक नाम का मित्र होता है जो गुदा नामक कर्मेंद्रिय है। तो ये जो है नरक का द्वार है, गुदा द्वार। आगे अब नारद जी बताते हैं अंधे साथी कौन है। दो अंधे साथी हैं राजा पुरंजन के साथ में, दो साथी अंधे हैं राजा पुरंजन के साथ में। अंधे साथी कौन है? हाथ और पैर, ये अंधे हैं लेकिन साथी रह रहे हैं राजा पुरंजन के साथ में। जीव हाथ और पांव उनकी सहायता से सभी प्रकार के कार्य करता और इधर उधर जाता है। वैशतम नरकम पायुर लुब्ध कौन दो तुम श्रणु हस्तपाद अपमान ताभ्याम युक्तो याति करोति च। फिर अंतापुर महाराज पुरंजन जो है जब थक जाते हैं भोगों से तो अपने अंतापुर में आ जाते हैं, नगर के अंदर अंतापुर में आ जाते हैं। तो अंतापुर क्या है? हृदय, हृदय का सूचक है। और मन उसके साथ में मन है विसूचिन, विसूचिन नाम का जो है ना मन उसके साथ रहता है। जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं तो कभी संतोष और कभी हर्ष उत्पन्न करते हैं। अंतःपुरम च हृदयम विसूचिर मन उच्यते तत्र मोहम प्रसादम वा हर्षम प्राप्नोति तद्गुणे। तात्पर्य प्रोपा लिखते हैं, इस संसार में जीव का मन और बुद्धि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं और इन गुणों की संगति के अनुसार मन इधर उधर जाने का आदि हो जाता है। उसी के अनुसार हृदय में संतोष हर्ष या मोह का अनुभव होता है। वास्तव में जीव निष्क्रिय रहता है प्रकृति के गुण ही मन और हृदय पर कार्य करते हैं और जीव फल का भोग करता है। भगवद गीता में 3:27 स्पष्ट कहा गया है, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशां अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मनमिते। मोहग्रस्त आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों के वश में होकर अपने को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में ये प्रकृति के द्वारा संपन्न होते हैं। फिर आपको पहले ही बताया जा चुका है कि राजा पुरंजन की रानी कौन है, बुद्धि। मनुष्य की बुद्धि ही रानी है। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों को केवल अनुकरण करता है। जो पुरंजन की जो बुद्धि है तो वो उसकी पत्नी है। तो पहले वर्णन हुआ था कि जब वो पत्नी है जागती है तो राजा जाग जाता है, जब उसकी पत्नी सोती है तो राजा भी सो जाता है, है? और जब वो खाती है तो वो खाने लगता है, है? और जब वो हंसती है तो हंसने लगता है, जब वो रोते हैं तो रोने लगता है, जब उठती है तो वो उठ जाता है, जब बैठती है तो वो बैठ जाता है, जब शोक मनाती है तो वो शोक करने लगता है, और जब खुशी मनाती है तो खुशी मानने लगता है, है? वो अपनी पत्नी के बिल्कुल बस में हो गया है। तो यथा यथा विक्रियते गुणांतो विकरोति वाम तथा तथोपदृष्टात्मा तन्वृत्तिरनु कार्यते। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, राजा पुरंजन की रानी को यहाँ पर साक्षात बुद्धि कहा गया है। बुद्धि स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में दोनों अवस्थाओं में क्रियाशील रहती है, किंतु प्रकृति के गुणों से दूषित होती है। बुद्धि के दूषित होने से जीव भी दूषित होता है। बद्ध अवस्था में जीव अपनी दूषित बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है। यद्यपि वो मात्र दर्शक है, फिर भी दूषित बुद्धि द्वारा बाध्य होकर वह कार्य करता है, किंतु वह रहता है कर्ता के रूप में। और इंद्रियां ही घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं। ज्यो ज्यो वर्ष के बाद वर्ष बीतते जाते हैं, ये घोड़े बिना किसी अवरोध के दौड़ते हैं। क्या है घोड़ा? ये शरीर रथ है, घोड़े क्या है? इंद्रियां। वर्ष के बाद वर्ष भर ये घोड़े दौड़ते रहते हैं, किंतु कोई प्रगति नहीं कर पाते हैं। पाप और पुण्य इस रथ के दो पहिए हैं। ये शरीर जो रथ है, इसके दो पहिए क्या हैं? पाप और पुण्य। प्रकृति के तीनों गुण इस रथ की ध्वजाएं हैं। तीन ध्वजा वाला रथ है, इस रथ की तीन ध्वजाएं हैं। एक तो है लाल ध्वजा, और दूसरी है पीली, और तीसरी है नीली, है ना? पीली ध्वजा मतलब सत्वगुण, और लाल ध्वजा मतलब रजोगुण, और नीली ध्वजा मतलब तमोगुण। तो तीन ध्वजाओं वाला रथ है, और पांच प्रकार के प्राणों से जीव बंधा है। ये रथ के रथ की रस्सियां हैं, पंच प्राण रथ की रस्सियां हैं, और मन ही क्या है? रस्सी। मन रस्सी है और बुद्धि सारथी है। घोड़े इंद्रियां हैं और मन रस्सी है और बुद्धि सारथी है। हृदय रथ में बैठने का स्थान है, सीट। रथ की सीट क्या है? हृदय। और हर्ष और शोक ये रथ के दो जुए हैं। सात धातुएं जो है इस रथ के आवरण हैं। पांच कर्मेंद्रियां उसकी पांच प्रकार की गतियां हैं, और जो है 11 इंद्रियां इसके सैनिक हैं। इंद्रिय सुख में मग्न रहने के कारण रथ पर बैठा हुआ जीव झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जन्म जन्मांतर तक इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता रहता है। देहो रथस्ंद्रिया स्वाम संवत्सर योगति द्विकर्म चक्र त्रिगुण ध्वजा पंचाशु बंधुराम मनोरथ निर्बुद्धि सूतुम कुबराम पंचेन्द्रियार्थ प्रक्षेपाम सप्त धातु वरोधकाम आकूतिर विक्रमो वायु मृग तृष्णाम प्रधावती एकादशेन्द्रिय चमुम पंचसूना विनोद कृम। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं इन श्लोकों में इंद्रिय सुख में जीव की लिप्तता का अत्यंत हृदयग्राही वर्णन हुआ है। संवत्सर सब महत्वपूर्ण है, जीव दिन प्रतिदिन सप्ताह प्रति सप्ताह पख प्रति पाख मास प्रति मास वर्ष प्रति वर्ष रस की प्रगति में उलझता जाता है। ये रस दो पहियों पर टिका है जो कि पाप कर्म और पुण्य कर्म है। जीव अपने पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार विशेष शरीर प्राप्त करता है, किंतु विभिन्न शरीरों में उसके देहांतरण को प्रगति नहीं माना जा सकता। वास्तविक प्रगति क्या है गीता में बताई भगवान ने 4:9 त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति। जब दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना होता है तो वास्तव में मनुष्य प्रगति करता है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय 138वें पयार में कहा गया है, एता ब्रह्मांड भारी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनि के कराए भ्रमण। जीव संपूर्ण ब्रह्मांड भर में घूमता है और विभिन्न लोकों में विविध योनियों में जन्म लेता रहता है। इस प्रकार वह ऊपर नीचे घूमता है, किंतु ये वास्तविक प्रगति नहीं है। वास्तविक प्रगति क्या है, प्रत्येक जगत से एकदम छूटना। जैसे कि भगवत गीता 8:16 में कथित है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति अर्जुन माम के तु कौन्ते पुनर्जन्म न वेद्यते। इस संसार में सबसे ऊंचे लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक सभी दुख के स्थान हैं, जहाँ बारंबार जन्म और मृत्यु होती है, किंतु हे कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। गोपाल लिखते हैं, जिस प्रकार राजा रथ पर आरूढ़ होता है उसी तरह जीवात्मा शरीर में आरूढ़ है। उसके बैठने का स्थान क्या है, हृदय है, जहां पर वह जीवन संघर्ष में जुट जाता है और यह संघर्ष बिना किसी प्रगति के निरंतर चलता रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल बिसेर भांड अमृत बलिया जेवा खाए नारायो ने सदा फिरे कदर भक्षण करे तारे जन्म आधा पाते। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के प्रभाव में आकर जीव अत्यधिक संघर्ष करता है और एक के बाद एक नाना योनियों में वो भ्रमण करता रहता है। सभी प्रकार के निंदनीय भोजन करता है और अपने सुख भोग के कार्यों द्वारा धिकारा जाता है। फिर इसमें चंडवेग बताया गया है कि चंडवेग कौन है। चंडवेग या शक्तिशाली काल कहा गया है, वो कौन है, दिन और रात से बना है और जो गंधर्व और गंधर्वी हैं, शरीर की आयु दिन और रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है, जिनकी संख्या 360 है। चंडवेग जो है ना काल है, चंडवेग ने आक्रमण कर दिया इस शरीर रूपी नगर में, है ना, तो उसके जो है साथ में 360 गोरे सैनिक हैं और 360 काले सैनिक हैं। आप समझे ना, तो 360 गोरे सैनिक मतलब दिन है और 360 काले सैनिक यानी रात है, है ना। तो चंडवेग जो है ना वो है काल है, जिसके साथ में 360 गोरे गंधर्व हैं और 360 काले गंधर्व हैं। तो इस प्रकार शरीर की आयु दिन रात बीतने से क्रमशः घटती जाती है। संवत्सर चंडवेग कालो योनोपलक्षित तस्या हानि है गंधर्वा गंधर्व्यो रात्र्या स्मृतम हरंत्यायो परिक्रांत्याम सस्युत्तर शत त्रयम। फिर काल कन्या ने आक्रमण किया, राजा पुरंजन की नगरी में काल कन्या ने आक्रमण किया, तो काल कन्या कौन है, वृद्धावस्था, उसने आक्रमण किया इस नगर में, तो कोई भी वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं करना चाहता, किंतु यवन राज जो साक्षात मृत्यु है वृद्धावस्था को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है ना। तो यवन राज की जो बहन है वो पहले इस नगरी में आक्रमण करती है वृद्धावस्था। कालकन्या जरा साक्षात लोकस्ताम नाभिनंदती सुसारम जगृहे मृत्यु क्षयाय यवनेश्वर। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, शरीर के भीतर बंदी जीव कालकन्या अर्थात वृद्धावस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है। यवनराज मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक है। यमराज के पास जाने से पहले जीवात्मा जरा अर्थात वृद्धावस्था को जो यवनराज की बहन है स्वीकार करता है। अशुद्ध कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य यवनराज उसकी बहन के बस में आ जाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और नारद मुनि द्वारा बताई गई भक्ति में लगे रहते हैं वे यवनराज और उसकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होते। कृष्ण भक्त होकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद वह दूसरा भौतिक शरीर न धारण करके भगवान के पास वापस जाता है। अच्छा, इसके बाद यवन राज के जो अनुचर हैं वो कौन है? सैनिक हैं। कौन है? शरीर और मन के विभिन्न प्रकार के रोग, ये उसके सैनिक हैं। किसके सैनिक हैं? यवन राज के, यानी मृत्यु के सैनिक हैं। फिर उनका साथी मित्र है प्रज्वार है? जो कि उसकी सहायता करता है, सहायक है प्रज्वार। तो क्या है? ज्वर बुखार, ये मृत्यु का सहायता करने वाला है। शरीर के भीतर जो जीव है विविध क्लेशों द्वारा जो दैविक भौतिक और अपने शरीर और मन से संबंधित हैं विचलित होता रहता है। तीन प्रकार के कष्टों से विचलित होता रहता है जीवात्मा। समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेक अनेक योजनाओं में बह जाता है। निर्गुण होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकार से इस भौतिक इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वो इस शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। आधयो व्याधय सैनिकाय विनाशरम भूतोपसर्गासुर प्रज्वारो दिविधो ज्वर एवं वो विधेर दुख दैव भूतात्म संभव क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहि देहि तमोवृतम् प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान् आत्मन्यध्यस्य निर्गुणान् शेते कामलवान् ध्यायन् ममामिति कर्म कृन्। जीव की ये प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की पूरी छूट है, किंतु जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है तो वह अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने को शरीर मान लेता है। कभी वह तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण के अधीन होता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के वश में रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। यदात्मानम् अभिज्ञाय भगवन्तं परम गुरुम् पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृते सुदृङ् गुणाभिमाने सततां कर्माणि कुरुते वशम्। तात्पर्य में लिखे हैं प्रभुपाद जी, प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में से अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि जीव को स्वतंत्रता प्राप्त है जो सुदृक शब्द से परिलक्षित है, जिसका अर्थ है जो अपना कल्याण देख सके। जीव की स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है और चुनाव करते समय उसे धोखा हो सकता है। वह श्री भगवान का अनुकरण करने की सोच सकता है। एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू कर सकता है, इस तरह वह अपने स्वामी का अनुकरण करता है और ऐसा करने पर उसे अपने स्वामी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार वह कभी सफल होता है तो कभी असफल होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण कांत जीव भी भगवान की स्पर्धा में अपना व्यापार प्रारंभ करता है। भगवान का पद पाने के लिए अनेक प्रतियोगी हो जाते हैं, किंतु भगवान बनना कोई सरल कार्य नहीं है। इस प्रकार विभिन्न दलों द्वारा भगवान का अनुकरण करने के फलस्वरूप विकट जीवन संघर्ष चल रहा है। भव बंधन का कारण भगवान की सेवा से हटकर उनका अनुकरण करना है। भगवान का अनुकरण मायावादी करते हैं क्योंकि विकृत्रिम ढंग से भगवान से तालाब में करना चाहते हैं। जब वे अपने को मुक्त मानते हैं तो वे ज्ञान के भ्रम में होते हैं।
कोई ना तो कोई ईश्वर बन सकता है
न ही उनके समान बन सकता है। अच्छा, कोई ना तो ईश्वर हो सकता है ना ही उनके समान बन सकता है, ऐसी कल्पना करना भवबंधन में पड़े रहना है।
इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रजोगुण किस प्रकार ज्ञान को ढक देता है। जैसा कि गीता में बताया गया है कि रजोगुण से उत्पन्न काम ज्ञानियों का शत्रु है तथा यह ज्ञान को ढक देता है।
जो सतोगुणी है वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह उच्च लोकों को जाते हैं जहाँ देवताओं का निवास है। जो रजोगुणी है वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। शुक्ला प्रकाश भू स्थान लोकान अपनोति करहि चिन दुखोदरकान क्रियायासाम समासो को उत्पतान क्वचिन। रूपा तात्पर्य में लिखते हैं कि आधुनिक समाज मानव समाज बुरी तरह से रजोगुण से प्रभावित है। फलस्वरूप लोग बड़े बड़े कारखानों में काम करने में लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े कारखानों में जो काम लगे हैं वो कौन से गुण में है? कौन से गुण में? रजोगुण में है। वे ये भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद है। भगवत गीता में ऐसे कामों को उग्र कर्म कहा गया है। जो लोग श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करते हैं वे पूंजीपति कहलाते हैं और वास्तविक काम करने वाले श्रमिक या मजदूर कहलाते हैं। वास्तव में भी दोनों ही पूंजीपति हैं और मजदूर रजोगुणी और तमोगुणी दोनों हैं। इसका परिणाम ये है कि अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इनके विपरीत वे लोग हैं जो सतोगुणी हैं, कर्मी और ज्ञानी। कर्मीजन वैदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी ब्रह्म में सदाकार होना चाहते हैं। इस प्रकार इस जगत में विभिन्न योनियों में सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। इसे संसार में श्रेष्ठ और निकृष्ट जीव रूपों की व्याख्या हो जाती है। आगे कुचित पुमान कुचित स्त्री कुचित नो भय मंदी देवो मनुष्य स्त्री अज्ञा यथा कर्म है गुणम भवान। प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीव कभी नर कभी नारी कभी नपुंसक कभी मनुष्य कभी देवता कभी पक्षी कभी पशु बनता है। इस प्रकार वह इस जगत में घूमता रहता है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों द्वारा विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता है। यह जीव उस कुत्ते के समान है जो भूखवश भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। वह अपने प्रारब्ध के अनुसार कभी दंड पाता है और कभी खदेड़ दिया जाता है अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इसी प्रकार जीव या अनेकानेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान, कभी वह स्वर्ग को जाता है कभी नरक को तो कभी मध्य लोकों को जाता है। छत्परी तो यथा दीना सारमेयो गृहम गृहम शरण विन्दति अंदिष्टम दंडमोदन में तथा कामाशयो जीवन उच्चावचे पथा ब्रह्मन अपर्यधो वा मंदेवा याति दिष्टम प्रिया प्रियम। तात्पर्य रूपाल क्या लिखते हैं? यहाँ पर जीव की स्थिति की तुलना कुत्ते से की गई है। भाग्यवश कुत्ते का मालिक धनी हो सकता है और भाग्यवश वह सड़कों में घूमने वाला कुत्ता बन सकता है। धनी मालिक का कुत्ता होने पर वह मौत से रहता है। कभी कभी पश्चिमी देशों में कुत्ते का मालिक उसके नाम पर लाखों डॉलर की राशि छोड़कर मरता है कुत्ते के नाम पर। किंतु सड़कों पर बिना भोजन के घूमने वाले कुत्तों की भी संख्या कम नहीं होती। अतः जीव की बद्ध अवस्था की तुलना कुत्ते से करना अत्यंत उपयुक्त है। किंतु यदि कुत्ता ही बनना पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा। अगर कुत्ता भी बने तो क्या बने? किसके कुत्ते बने? श्री कृष्ण के कुत्ते बने। भौतिक जगत में कुत्ता कभी ऊंची जाता है तो कभी सड़क पर घूमता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का कुत्ता सदैव सुखी रहता है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, वैष्णव ठाकुर तुम्हारे कुकुर है भलिया जाना हमोरे। इस प्रकार भी किसी वैष्णव का कुत्ता बनना पसंद करते हैं। कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर सदैव रहता है और अवांछित व्यक्ति को अपने मालिक के पास नहीं फटकने देता। इसी प्रकार मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उसे सब तरह से प्रसन्न रखना चाहिए। जब तक वो ऐसा नहीं करता उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। यही नहीं, यदि इस जगत में वह सतोगुणी नहीं बनता तो वह उच्च लोगों को नहीं जा सकता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 14:18 हुई है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थां मध्ये तिष्ठन्ति राजसां जघन्य गुणमृत्युस्था अधो गच्छन्ति तामसां। सारे जीव भाग्य से संघर्ष करते हैं, अन्य जीवों से संघर्ष करते हैं, अपने मन से संघर्ष करते हैं, शरीर से संघर्ष करते हैं, दुखों का सामना करते हैं, इतने भर भी प्रकृति के नियमों के द्वारा बंधे रहते हैं। दुखे स्वे के तरे नापी देव भूतात्म हेतु जीवस्य नाव्यवच्छेदा चाचेतन तत्प्रतिक्रिया। मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है और जब ये उसे भारी लगे तो कभी कभी वह बोझ को कंधे पर रखकर विश्राम का अनुभव कर सकता है। अगर बहुत भारी बोझ है तो क्या करते हैं आप, कंधे में रख लेते हैं तो लगता है कि भाई अब बोझा कम हो गया, लेकिन बोझा कम थोड़ी होता है, वो लगता है कि भाई आप बहुत आराम मिला, कंधे में रख लिया, बोझा तो कम नहीं हुआ। इस तरह वह बोझ से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है, फिर भी वो इस बोझ से मुक्त होने के लिए चाहे जो भी विधि निकाले उस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से देख और कुछ नहीं कर सकता। इस कंधे में बोझा लगता है तो इस कंधे में रख लिया तो सोचता है कि अब आराम मिला मुझे, लेकिन बोझा तो दूर नहीं जाता। यथा ही पुरुषो भारम शीर्षा गुरु मुद्वहन संस्कंदे न साधते तथा सर्वा प्रतिक्रिया। ये सब रजोगुण के कष्ट हैं। आगे कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल का कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके निराकरण नहीं कर सकता, यानी कर्म के बंधन से नहीं छूट सकते बिना कृष्ण भक्ति के। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण है। जब हम कोई कष्ट वाला स्वप्न देखते हैं तो हम उस कष्ट से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कब तक? अगर आप कष्टप्रद सपना देख रहे हैं, कोई बड़ा कष्ट हो रहा है सपने में, तो आप उस कष्ट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अगर जाग जाएं, तो स्वप्न का निवारण तो जाग करके ही किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा अस्तित्व हमारे अज्ञान और मोह के कारण है। जब तक हमें कृष्ण भक्ति नहीं जग जाती, ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिल सकता। समस्त समस्याओं को हल कर लेने के लिए हमें कृष्ण भक्ति जगानी होगी। कृष्ण भक्ति जगाने से क्या होता है? हमारी चेतना जागती है। ये संसार एक स्वप्न के समान है। इसमें हम कृष्ण के अतिरिक्त अनेक प्रकार के झूठे संबंध स्थापित करते हैं। काम कर्म केवलम द्वयम् हि विद्योपसृतम् स्वप्ने स्वप्ने एवानघ। कभी कभी हम इसलिए कष्ट पाते हैं क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिखाई देता है, किंतु वास्तव में ना तो शेर होता है और ना ही सर्प। इस प्रकार हम सूक्ष्म रूप में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं होता जब तक हम स्वप्न से जाग नहीं जाते। अर्थे विद्यमानेति संसृतिर्ना निवर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है रजोगुण की, क्योंकि आज का जो श्लोक है भगवद गीता में रजोगुण का है कि कैसे कर्मों में अशांति पैदा होती है, लोभ पैदा होता है, तो हमने चर्चा की है। आप किसी का कोई प्रश्न है? या मैं प्रश्न करूं, रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? भगवान ने क्या बताया? रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? आसक्ति, लोभ, आसक्ति, लोभ और अधिक से अधिक काम करना, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। अब एक और घटना है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अध्याय 23 में, जिसमें अवंती ब्राह्मण का गीत है। भगवान कृष्ण उद्धव जिसे कहते हैं, अवंती देश में एक ब्राह्मण था जो अत्यंत धनी था और अत्यंत ऐश्वर्यों से युक्त था। व्यापार कार्य में लगा था, किंतु बहुत ही कंजूस था, कामी था, लालची था और क्रोधी था। अवंत सूद जहां कश्चिन आसी नाढ्य तम श्रियाम वार्ता वृत्ति ही कदर यस्तुम कामी लुब्धोती कोपनः। उसका घर धर्म से विहीन था, उसमें पारिवारिक जनों के प्रति और अतिथियों का भी ठीक से आदर नहीं होता था और उपयुक्त अवसरों पर शरीर की इंद्रिय तृप्ति भी नहीं होने देता था। तो आप देखिए, वो ब्राह्मण चूंकि बहुत लोभी था तो अपने इंद्रिय तृप्ति में भी वो धन खर्चा नहीं करता था। ज्ञातयो तिथयस्तस्यं वांग मात्रेणापि नार्चिता शून्यावसत है आत्मापि काले कामेर नर्चिता। क्योंकि वह कठोर हृदय और कंजूस था, इसलिए उसके पुत्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी और पुत्रियां और नौकर उसके प्रति वैर भाव रखने लगे। ऊब जाने के कारण वे उसे कभी भी स्नेह पूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। तो देखा, उस लोभ के कारण वो सबका दुश्मन बन गया या सब उसके दुश्मन बन गए। दुश्शीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्र बांधवाः दारा दुहितरो भित्या विषन्ना न चरण प्रियम। इस तरह यज्ञों के जो देवता हैं, वे भी उस ब्राह्मण से क्रुद्ध हो उठे, क्योंकि वो यज्ञों में उन देवताओं की पूजा भी नहीं करता था। कंजूस होने के कारण अपनी धन की रखवाली वो यक्ष की तरह करता था और बिल्कुल किसी प्रकार से वो न तो धर्म का आचरण कर रहा है और न ही विषय भोगों का आचरण कर रहा है। तस्यैवं यक्ष वित्तस्य चितस्यो भय लोकताम धर्म कामे विहीनस्य शुक्रधो पंच भागिनः। हे उद्धव, देवताओं की उपेक्षा करने से उसके पुण्य नष्ट हो गए और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन तो भी उसका धन का भंडार पूरा समाप्त हो गया। तदवध्यान विस्तृत पुण्य स्कंधस्य भूरिदेह अर्थोप्य गच्छन्न धनम भावायासय परिश्रमः। कुछ तो धन उसके संबंधियों ने ले लिया, कुछ चोरों ने ले लिया, कुछ भाग्य से नष्ट हो गया और कुछ समय के फेर से नष्ट हो गया, कुछ सामान्य लोगों ने लूट लिया और कुछ सरकारी अधिकारियों ने छीन लिया। ज्ञातयो जगृहो किंचन किंचन दस्य उद्धव दैवतः कालतः किंचन ब्रह्म बंधोर न पार्थिवान। जब उसकी पूरी संपत्ति नष्ट हो गई तो वह ब्राह्मण जिसने ना तो धर्म का आचरण किया न इंद्रिय भोग किया, अब अपने पारिवारिक जनों से उपेक्षित रहने लगा और बहुत चिंता का अनुभव करने लगा। स एवं द्रविणे नष्टे धर्म काम विवर्जिता उपेक्षितस्य सुजने चिंता मापे दुरत्ययम्। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा और शोक हुआ, उसका गला आंसुओं से रुंध गया, अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। अब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तस्यैवं ध्यायतो दीर्घम नश्चराय तपस्विनः सिद्ध्यतो वास्तुकंठस्य निर्वेदं सु महान भून। अब वो क्या कहता है? कहता है कि इस कंजूसी के कारण मुझे कोई सुख नहीं मिला,
संपत्ति से भी मुझे कोई सुख नहीं मिला और इस कंजूसी के कारण व्यक्ति मरने पर भी नरक प्राप्त करता है। प्रायणार्था कदर्याणाम न सुखाय कदाचन यह चात्मो प्रतापाय मृतस्य नरकाय च।
फिर उसने क्या बताया कि 15 दुर्गुण लोभ से होते हैं, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने बताया है कि रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। तो ये ब्राह्मण जो है ना, अब क्या विचार कर रहा है कि लोभ से 15 दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, एक तो चोरी, दूसरा हिंसा, तीसरा असत्य भाषण, चौथा दोहरा बर्ताव, पांचवा काम, छठवा क्रोध और सातवां चिंता, आठवां गर्व और नवां झगड़ा लड़ाई, दसवां शत्रुता, ग्यारहवां अविश्वास, बारहवां ईर्ष्या और तेरहवां स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट और चौदहवां जुआ खेलना और पंद्रहवां नशा करना। ये 15 दुर्गुण लोभ के कारण ही उत्पन्न होते हैं। स्तेयम हिंसा नृतम दम्भा कामा क्रोधा स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पञ्चदशानर्थम् ह्यर्थ मूला मतान्नाम् तस्मादनर्थम् अर्थाख्यम् त्रयोर्थी दूरतस्य जेन। तो इसलिए वो ब्राह्मण कह रहा है कि लोभ से ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं, इसलिए अच्छा यही है कि जो व्यक्ति जीवन का असली लाभ उठाना चाहता है उसे अवांछित भौतिक संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ तक कि लोभ के कारण क्या होता है, मनुष्य के सगे भाई भी इस संबंध तोड़ लेते हैं, पत्नी संबंध तोड़ लेती है, माता पिता और मित्र भी अपने संबंध तोड़ लेते हैं और एक कौड़ी के कारण शत्रु बन जाते हैं। विद्यन्ते भ्रातरोदारम पितरां सुहृदस्तथाम एकास्निग्धां काकिनीनां सद्या सर्वे रया कृताम। जो विवेकशील व्यक्ति हैं, अपने धन, अपने यौवन और अपने बल को भगवत प्राप्ति करने में सहायता लेते हैं, भगवत प्राप्ति करने में उसको लगाते हैं, किंतु मैंने तो अपनी संपत्ति के बढ़ाने के व्यर्थ के प्रयास में ही अपना सब लुटा दिया, अपना धन, यौवन, बल सब लुटा दिया। अब वृद्ध होने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। व्यर्थयार्थे हया वित्तम प्रमत्तस्य वयो बलम कुशलायेन सिद्ध्यन्ते जरठा किम साधयेन। तो देखा, लोभ के कारण व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है और ये ब्राह्मण जैसी बात में बता रहा है हमें समझना चाहिए। रजोगुण के कारण व्यक्ति का ज्ञान कैसे ढक जाता है, लोभ उसके ज्ञान को कैसे ढक देता है। अब आगे ब्राह्मण कहता है, बुद्धिमान मनुष्य संपत्ति पाने के लिए व्यर्थ के प्रयासों से कष्ट क्यों भोगता है। निस्संदेह ये सारा संसार किसी की माया शक्ति से अत्यधिक मोहग्रस्त है। कस्मा संक्लिष्यते विद्वान व्यर्थयार्थे हया सकृत् कस्यचिन् मायया नूनम् लोकोऽयम् सो विमोहितः। तो यहाँ ब्राह्मण जैसे कह रहा है कि किसी की माया शक्ति से ये पूरा संसार सुविमोहित है, कस्यचिन् मायया नूनम्, किसी की माया से। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि वो मेरी माया है, गुणमयी है, तो ये रजोगुणी माया है। आज के श्लोक में जो भगवान ने लक्षण बताया रजोगुण का, तो वो ही है, रजोगुण से जो लोभ उत्पन्न होता है तो ये भी एक माया है जिससे पूरा संसार विमोहित है। और ये जो अवंती का ब्राह्मण है, ये बहुत बुद्धिमान होने के कारण ये समझ गया कि जिस चीज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसी कार्य में पूरा संसार लगा हुआ है, धन की इकट्ठा करने में पूरा संसार लगा हुआ है। अब उस ब्राह्मण ने लोभ का एक और भी दोष बतलाया जिससे कि मनुष्य का जीवन कैसे कलंकित होता है। तो उसने बताया कि थोड़ा सा भी अगर लोभ हो व्यक्ति के चरित्र में तो उसका जो यश है और उसके जितने गुण हैं वो सब कैसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आकर्षक शारीरिक सौंदर्य में थोड़ा सा भी श्वेत कुष्ठ हो तो पूरा सौंदर्य खराब हो जाता है। यशो यशस्विनाम शुद्धम श्लाघ्या ये गुणिनाम गुणाम लोभा स्वल्पोपितान हंति चित्रो रूपम निवेक्षितम। हरे कृष्णा, धन्यवाद।